पहली बार मधुबन में कौन आए हैं? आपको पता है ये ज्ञान सरोवर कैसे बना है? पता है? ये पूरा ज्ञान सरोवर हर एक के एक एक रुपए से बना हुआ है। दादी ने मैसेज भेजा था सभी सेंटर्स पर, हर रोज हर एक को एक एक रुपए भंडारे में डालना है। तो अभी लगता है ना बहुत भव्य ज्ञान सरोवर बना है, अच्छा लगता है, अनुभव होता है। तो ये भव्य सरोवर कैसे बना है हर एक के सहयोग से, ऐसे ही हमारा जीवन दिव्य बनाना कोई कठिन काम नहीं है। जो हमारी छोटी छोटी बातें जो रोज हम करते हैं उससे थोड़ा परिवर्तन करें तो दिव्यता हमारे जीवन में आपे ही आ जाएगी। समझते हैं? ऐसे आसानी से आ जाएगा। तो आप लोग आप अपने जीवन का अमूल्य समय पैसा खर्च करके मधुबन में आए हैं तो उसका संपूर्ण लाभ, उसका इंपॉर्टेंस अवश्य होना चाहिए। बट्टी माना ही पहला नियम क्या है? पहला नियम बोलिए, हम सबको पता है। साइलेंस, मौन में रहना। हम जितना आवाज में आते हैं उतना हमारी शक्तियां क्या होता है, बढ़ता है, खर्च होता है। इसलिए बड़ी दादी का, दादी प्रकाशमणि जी का एक स्लोगन था, याद है? हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, स्पष्ट बोलो। ठीक है, तो आपकी बट्टी का एक दिन पूर्ण हो गया है, हम कितना साइलेंस में रहे? जैसे घर में रहते हैं वैसे ही इधर रहे हुए हैं या कुछ अलग रूप से? तो हर बात में मौन में रहना। तो बातें करने के लिए तो आपकी पूरी जिंदगी है, मे बी नेक्स्ट ईयर आप आएंगे तब तक पूरा साल आप बात कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं या वो अनुभव करने के लिए आए हैं या भगवान की कर्म भूमि पर आए हैं अपने अंदर शक्ति भरने के लिए, राइट? या दूसरों को शक्ति भरने के लिए आए हैं? अपने अंदर। तो हमको बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया है। और मुरली में और भी बात एक बताता है बाबा, महान से महान बुद्धिवानों को देखना है, कहां देखना है? यहां। दूसरा, तो हम तो नहीं है ना उस कैटेगरी में। तो कुछ बातें, ये जो दो दिन हैं आगे, कल और परसों, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, तो हमारे जीवन दिव्य बने। तो सवेरे से अमृत वेले से लेकर क्लास पूरा होने तक मौन में रहना पॉसिबल है? ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है जो उस समय हमको बात करना पड़े। और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा, मोबाइल अगर उतना ही जरूरत है तो आप कमरे में ही रहिए, मोबाइल का उतना इंपॉर्टेंस है तो। हम भगवान से मिलने आए हैं और मोबाइल बज रहा है। भक्ति मार्ग में भी मंदिर में जो लोग जाते हैं तो मोबाइल बाहर ही ले लेते हैं, राइट? और हम यहां भगवान से योग लगा रहे हैं, हमारा मोबाइल बज रहा है। हम कितना महान आत्माएं हैं ना? और भगवान की मुरली सुन रहे हैं। भगवान हमारे लिए परंधाम छोड़कर आया है, अपने बच्चों को बहिष्ठ हथेली पे बहिष्ठ देने, हम मोबाइल में बिजी हैं। क्या ये दो दिन आपका अपना मोबाइल बंद रख सकते हैं? सोच लीजिए। और बड़ी दादी हमेशा बोलती थी, योग के बाद बात नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद लाइट हुआ हम बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने एक घंटा मेहनत किया, दो तीन मिनट उसमें अनुभव हुआ, उस अनुभव से नीचे आने के लिए भी एक घंटा लगना चाहिए। हमारी मेहनत है ना, हमने मेहनत की। जैसे रंगोली बनाते हैं, अगर कोई टच करने जाता है तो हम क्या बोलेंगे? उतना मेहनत से बनाया, हम डांट भी देंगे उसको। ऐसे ही भगवान से हमने मिलन मनाया, एक घंटा मेहनत किया, तुरंत हम आवाज में आ गए तो हमारी शक्ति रहेगी। तो इसलिए बट्टी का पहला नियम मौन है। आप मौन में रहें, ऐसा नहीं जबरदस्ती, उसका भी आनंद लें। मैं आज मौन में हूं, भगवान के साथ हूं, बस। आजकल एक रिसर्च किए हैं, सभी को उदास क्यों रहते हैं पता है? बच्चे बड़े सभी आजकल जब अकेले रहते हैं, अपना चेहरा देखना, उदासी छाई हुई रहती है। क्यों पता है? हर कोई चीज, हम अच्छी चीज देखते हैं तुरंत क्या करते हैं? कोई अच्छी फूल देखा, या अच्छी चिड़िया देखी, या कुछ अच्छा नजारा देखा तो क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं या क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो खींचते हैं, राइट? आजकल प्रसन्नता तो बहुत दूर है। हम अच्छा फूल देखकर तुरंत फोटो मोबाइल निकाल के फोटो निकालते हैं। इससे बहुत गहरा मन पे प्रभाव पड़ता है। क्यों? हमने अच्छी चीज देखा, फोटो निकाला, रख दिया, राइट? हमको पता है बहुत अच्छा चीज मैंने फोटो निकाल के रखा हूं, मोबाइल में है मेरे, बुद्धि को पता पड़ गया, वहां मोबाइल में रख दिया। अगर कोई बुरी चीज घटी, या किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो कहां रहता है? उस समय सोचेंगे ये बहुत खराब है, मोबाइल में फोटो निकाल के रख दो। वो कहां रहता है? मन में। जो अच्छी चीजें सारे मोबाइल पे रख दिया, जो खराब चीजें सारी मन में रख दिया, तो वो प्रसन्नता कहां से आएगी? इसलिए ये कहते हैं फोटो निकालने से पहले उसको देखिए अच्छी तरह, उसको मन में छाप लीजिए। बहुत समय पहले नए नए मोबाइल निकले थे, तो ओम शांति भवन की बात है, अब एक बार दादा आए हुए थे, जैसे मुरली पूरा हुआ फोटो खींचते हैं, 8-10 लोग खड़े हो गए मोबाइल पे अपना फोटो खींचने, विदेशियों का सीजन था। तो तुरंत बाबा ने क्या बोला, किसी को याद है? नहीं। तो तुरंत बाबा ने बोला, आप लोगों को कैसे शौक है मोबाइल में फोटो निकालने का, ऐसे ही हर वक्त बाबा वतन में बैठकर बच्चों का फोटो खींचता रहता है। तो हमारा फोटो स्वयं भगवान खींच रहा है, इससे कोई बड़ी खुशी होगी? तो हर जगह हमारी दिव्यता को खोते जा रहे हैं। इसलिए पहला मौन, दूसरी मोबाइल। अगर साइलेंस में डालना नहीं आता है, बाजू वाले को पूछ लीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। भगवान से बढ़कर मोबाइल नहीं है हमारे लिए, एटलीस्ट ये 2 दिन के लिए कम से कम, ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस चीज से हमारा मन बन जाता है, कौन सा? और कल बाबा ने बोला था, कोई माता पिता बाजार जाते हैं, बच्चों के लिए क्या लेके आते हैं? कल के मुरली में क्या था? चॉकलेट, मिठाइयां लेके आते हैं, इसलिए बाबा मधुबन में क्लास के बाद टोली खिलाते हैं, राइट? भोजन हमारे लिए ब्रह्मा भोजन अति इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, जो बनाने वाले योग युक्त बनाए, खाने वाले की योग लग जाए, राइट? ऐसे ही हम भोजन खरीद सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? ना? क्यों? मार्केट में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, दाल चावल सब खरीदते हैं, खरीद सकते हैं ना? नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, तब हम खरीद सकते हैं जब हमारे लिए कोई 3 महीना मेहनत करे, तब वो चीज बाजार में आती है, राइट? दूसरी चीजें से आपको मिल जाता है, लेकिन अन्न अगर कोई 3 महीना मेहनत नहीं करता है किसान, हम खरीद नहीं सकते हैं, भले करोड़ों रुपया हमारे पास हो। जैसे कोरोना में कोई किसी के पास कितना भी करोड़ों हो, कोई प्राण बचा पाए? ना डॉक्टर, ना उपलब्धियां, कोई भी नहीं। ऐसे ही हमारे लिए भोजन भी महत्वपूर्ण है। हर एक दाना वेस्ट ना हो, हमारे थाली से एक दाना भी हम फेंके नहीं। एक तो कोई 3 मास का मेहनत हम फेंक रहे हैं, दूसरा ब्रह्मा भोजन। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो ये 2 दिन कम से कम एक दाना भी फेंकना नहीं, ठीक है? भक्ति मार्ग में बाबा बताते हैं थाली धो के पी लेते हैं, राइट। आपके माँ बाप या आपके बुजुर्ग लोग आपके देखे होंगे थाली में एक दाना भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमने क्या सीखा? उसके साथ साथ बाबा की याद। अगर दो दिन छह वक्त हम चैलेंज ले लें अपने लिए, बाबा की याद में खाना है मुझे, बाकी बातें करने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन ये दो दिन मुझे साइलेंस में खाना है। कोई बातें कर रहा है, आवाज कर रहा है, वो उसकी मर्जी, लेकिन मुझे ये करना है। तो हर जगह बाबा की याद। आप क्लास से बाहर निकलते हैं, तुरंत अपने मन में मुरली का चिंतन कीजिए। कई माताएं आते हैं, मुरली याद नहीं रहता है बोलते हैं। क्यों? मुरली पूरा होते ही हम दुनियावी बातों में घुस जाते हैं। इसलिए कल से मुरली पूरा होते ही डाइनिंग हॉल तक जो जो बाबा ने बताया, आपको जो याद आता है उसको रिमाइंड कीजिए मन ही मन में। किसी को पूछना नहीं है, ज्ञान चिंतन ही करते हैं ना, ज्ञान की बातें ही कर रहे हैं ना, हम समझते हैं, लेकिन वो ज्ञान की बातें शुरुआत होती है, अंत कहां तक पहुंच जाते हम कोई पता नहीं रहता है, कहां से कहां चले जाते। इसलिए अपने मन में आपे ही रिमाइंड कराना, रिवाइज करना। तो मुरली में चार बातें बहुत अच्छी, जो आपको बहुत अच्छी लगी उसको नोट कर लीजिए, तो वो पूरा दिन याद रखिए। योग के लिए, सेवा के लिए, खुशी के लिए हमेशा अलग अलग बाबा बताते हैं, उसको याद करना, ठीक है? ये दो दिन कम से कम पॉसिबल है, ओके। दूसरा, हम योग में बैठते हैं स्थिर बैठना। वैसे बाबा कभी पोस्चर के लिए इसी प्रकार बैठना है नहीं कहते हैं, लेकिन योग में जब तन स्थिर होता है तभी मन स्थिर होगा। बाबा एक मुरली में बताते हैं, आपने 4 घंटा योग किया, 8 घंटा योग किया, बहुत अच्छा, लेकिन उसकी सिद्धि क्या मिली? जैसे बाहर भी आप कमाने जाते हैं या कमाते हैं, पैसा तो मिला, लेकिन उसकी सिद्धि आप कुछ खरीदेंगे घर के लिए, भोजन, गैस, बिजली, जो भी आपको चाहिए, गिफ्ट खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, उसका सिद्धि मिला ना। ऐसे 4 घंटा योग किया या 8 घंटा योग किया, उसकी सिद्धि क्या मिली? अगर सिद्धि नहीं मिली, बस आपने कमाया, फेंक दिया उधर, या उधर तिजोरी में रख दिया बस। तो योग का सिद्धि तब मिलेगी जब हमारे कर्मेंद्रियों में लेके आएंगे। एक तो योग के समय स्थिरता, कर्मेंद्रियों का स्थिरता, योग के बाद उस शक्ति को कर्मेंद्रियों में लाना। जैसे योग से ही उठे तुरंत बहुत अच्छे मीठी आवाज में बात करना, बहुत धीरे बोलना। और बाबा कहते हैं ना, जहां 100 शब्दों का आवश्यक हो वहां कितने शब्द यूज करें? 1000 हैं? 2 शब्द या 1 शब्द या 10 शब्द, बस हां कर दीजिए, उतना इनफ होता है। तो वो शक्ति को आपने मुख में लाया, नयनों में लाए, तो वो शक्ति उधर काम करेगी, तो उसकी सिद्धि मिली। चलना, योग के बाद आराम से चलिए, तो वो शक्ति पांव में ले क्या है। आपके घुटनों के दर्द ठीक हो जाएगा, पांव के दर्द ठीक हो जाएगा। कोसते रहते हैं ना, मेरा ही घुटने दर्द होता है, मैं इतना योग करती हूं तो भी ठीक नहीं होता है, बाबा ठीक नहीं करता है। बाबा तो शक्ति दे दिया लेकिन आपको लगाया नहीं। जैसे कोई भी डॉक्टर ऑइंटमेंट दे देता है, बहुत अच्छा ऑइंटमेंट है, वो लेके आके आप घर में रख लिया या आप अपने पर्स में रख लिया, दर्द ठीक होगा? होगा? जब आप लगाएंगे तब ठीक होगा। लगाने के बाद भी सेक होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा देर के लिए मालिश करना चाहिए, ये सब बताते हैं ना। ऐसे ही योग की शक्ति, हम आराम से चलें, अव्यक्त रूप से चलें, प्यार से चलें, तब वो शक्ति पांव में भी जाएगी, तो वो सिद्धि मिलेगी। तो हर कर्म योग के बाद थोड़ा धीरे से। पुराणों को पता हो, दादी जानकी, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। फास्ट चलते हैं, श्वास वेस्ट होता है, दादी बोलती थी। जब आप बाबा की याद में चलेंगे, बहुत हल्के रूप से चलेंगे, पांव पे भारीपन नहीं होगा, लाइट होकर चलेंगे, तो वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे हर कार्य में योग की शक्ति उपयोग हो, तब हर कर्मेंद्रियों की सिद्धि मिलेगी। नहीं तो योग किया, तिजोरी में रख दिया, बस। दूसरा, हर जगह का इंपॉर्टेंस है। बाबा रूम में जाते हैं, उस जगह का भी इंपॉर्टेंस है। उधर भी कई बार मोबाइल बजते हैं, बोलते हैं उठो चलो, चलते हैं। ये दो दिन आपका कोई साथी नहीं है, किसके साथ रहेंगे दो दिन? मंजूर है? अभी उठ के चलो भोजन पे चलते हैं, किसी से भी नहीं पूछना है। दो दिन अपने आप को बाबा के साथ हवाले कर दो। आपने खाया, पानी पिया, गर्म पानी लिया, कोई बात नहीं, अपने आप सब कुछ आप लोग करते हैं। अनुभव भी किसी को बताना नहीं, मैं तब आया था, ये बिल्डिंग में ऐसा था, कोई जरूरी नहीं। बस मैं और बाबा। तो इतना समय तो साथियों के साथ रहे, कहीं सेंटर से आए हुए हैं, कहीं एक घर से आए हुए हैं, उसका एक दूसरे का ख्याल नहीं करना, जस्ट अपने आप समय। एक दिन में तो सबको पता पड़ गया होगा ना, कौन सा चीज कहाँ रहता है, कब मिलता है। तो ये दो दिन बाबा के साथ, बाबा मेरा साथी है, बस। कुछ भी होवे, बाबा अभी मैं चाय पीने जा रहा हूं, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, बाबा से बात करना। और तब देखो आपका संबंध घनिष्ठ और बाबा की याद हमेशा रहेगा। तो मेरा साथी, ये कम से कम ये दो दिन का अभ्यास कीजिए, मेरा साथी बाबा है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को आप जो ठीक कर सकते हैं, तो बाबा के साथ ये दो दिन प्रैक्टिस कीजिए। जो मधुबन में हम प्रैक्टिस करते हैं, व्यर्थ को हमेशा बाबा बोलता है, जो भी व्यर्थ चीज है मधुबन में छोड़ के जाओ। जैसे पुण्य स्थानों पर जाते हैं, कुछ छोड़ के आते हैं ना, जो हमको बहुत अच्छा लगता हो उसको छोड़ना होता है। और किसी को करेला पसंद नहीं है तो करेला छोड़ के आएगा, लेकिन मधुबन में जो व्यर्थ है उसको छोड़ना है। तो ये दो दिन में ये बातों पे अपना ध्यान रखें, तो अपना जीवन दिव्य बनता जाएगी। तो घर में भी ये रहेगा, हर समय मेरा संकल्प श्रेष्ठ हो। ठीक है, हो सकता है, या दो दिन के लिए। पहला, मौन, इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक। मौन से ही हमारे विल पावर आएंगे, आगे जाके जो भी समस्याएं आएगी उसको हम फेस कर सकेंगे। तो मौन की शक्ति उतना बड़ा है। तो अभी दो मिनट ऐसे अपने अंदर जाएंगे, बाबा को साथ लेंगे, फिर हम भोजन पे जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।